उदय अपने माता पिता की ओर हैरानी से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके माता पिता जो बात बोलने वाले हैं, शायद वो बात उसे पता है, लेकिन उसने उन दोनों के बीच बोलना सही नहीं समझा और वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। तभी इप्सिता के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, सुहासिनी जी, बताइए इप्सिता को। बेटा, इप्सिता की माँ ने कहा, हम आपसे ये बोल रहे थे कि अब आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और आप बहुत अच्छे समय पर घर भी वापस आए हैं। वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा और ख़ानदानी रिश्ता आया है, राजस्थान के सबसे बड़े राजवंशी परिवार के बेटे के लिए। राजवंशी परिवार की रानी साहबा ने आपको अपने महल की बहू बनाने के लिए चुना है। इप्सिता खाना खाते खाते रुक गई। अपनी माँ के मुँह से शादी की बात सुनकर उसे इस वक्त ऐसी कोई खबर मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इप्सिता के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, सुहासिनी जी, बताइए इप्सिता को। बेटा, इप्सिता की माँ ने कहा, हम आपसे ये बोल रहे थे कि अब आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और आप बहुत अच्छे समय पर घर भी वापस आए हैं। वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा और ख़ानदानी रिश्ता आया है, राजस्थान के सबसे बड़े राजवंशी परिवार के बेटे के लिए। राजवंशी परिवार की रानी साहबा ने आपको अपनी बहू बनाने के लिए चुना है। इप्सिता खाना खाते खाते रुक गई। अपनी माँ के मुँह से शादी की बात सुनकर उसे इस वक्त ऐसी कोई खबर मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इप्सिता काफ़ी सदमे में थी, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है, जब आप पैदा हुई थीं तब से ही हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि आप बहुत किस्मत वाली हैं। और देखिए, आज ये बात साबित भी हो गई। हमने आपकी शादी उदयपुर के सबसे बड़े राज परिवार में तय कर दी है। आप वहाँ बहुत खुश रहेंगी। हाँ बेटा, इप्सिता के पिता ने हामी भरते हुए कहा, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने हमेशा आपकी खुशी चाही है और आप वहाँ जाकर बहुत खुश रहेंगी। इप्सिता ने अपने माता पिता की ओर देखा। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। इप्सिता ने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहा, लेकिन मम्मी, शादी की इतनी भी जल्दी क्या है? और इप्सिता बोल ही रही थी कि उसकी माँ ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, हम सारी चीज़ें बहुत आराम से करेंगे बेटा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको पता है, कुंवर अभिमन्यु राजवंशी बहुत अच्छे इंसान हैं। सोचो, तुम्हें उनकी पत्नी बनने का सुख मिलने वाला है। हमें तो अभी से ही सारी बातें सोचकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मम्मी, इप्सिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, कौन है ये कुंवर अभिमन्यु राजवंशी? हम तो इन्हें जानते भी नहीं। तो फिर? इप्सिता की माँ ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी और मुस्कुराते हुए कहा, जानती नहीं हो तो जान लेना, वैसे भी कल शाम को आपकी कुंवर साहब के साथ मुलाकात है, शायद वे भी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आराम से मिलकर जान लीजिएगा आप दोनों एक दूसरे को। कल? इप्सिता ने बिल्कुल शॉक्ड होते हुए कहा। हाँ, इप्सिता के पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कल आपको कुंवर साहब से मिलना है, इसी बहाने आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान लेंगे। इप्सिता अपनी माँ और पिता को इतना खुश देखकर कुछ भी नहीं बोल पाई और उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब उसके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। उदय ने इप्सिता के चेहरे के भाव को नोटिस किया और उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। इप्सिता के माता पिता वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर इस बारे में ही काफ़ी बातें कर रहे थे और इप्सिता चुपचाप उनकी बातें सुनती जा रही थी। थोड़ी देर में इप्सिता डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगी, तभी उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप? आपने मीठा तो खाया ही नहीं। नहीं मम्मी, इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारा पेट भर गया है, हमें मीठा खाने का कोई मन नहीं है, इसलिए हम अपने कमरे में जा रहे हैं। इतना बोलकर इप्सिता सीधे अपने कमरे में चली गई। उदय ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और उसने अपने मन में कहा, मैं समझ रहा हूँ, इशी को अपनी शादी की बात सुनकर जरा भी खुशी नहीं हो रही है। वो शादी का नाम सुनते ही कितनी अपसेट हो गई। क्या माँ बाप को ये नहीं दिख रहा? मुझे इशी से बात करनी ही होगी। इतना बोलकर वो सीधे इप्सिता के कमरे में गया। इप्सिता अपने कमरे की खिड़की के पास गुमसुम बैठी थी। उसने बाहर आसमान में निकले चांद को देखा और एक टक उसे ही देखती रही। उलय इप्सिता के कमरे में आया और इप्सिता के सामने खड़े होते हुए बोला, इशी, आप इतनी आसानी से शादी के लिए कैसे मान गईं? क्या आप सच में इस शादी को लेकर खुश हैं? उदय भाई, इप्सिता ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास इस शादी को न करने का कोई विकल्प है? क्या आपको लगता है हम इस शादी के लिए मना कर सकते हैं? इशी, उदय ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी शादी की बात हो रही है, एक दो दिन नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, तुम ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कर सकती हो? उदय भाई, इप्सिता ने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं चाहकर भी शादी के लिए मना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपने नहीं देखा माँ बाप शादी को लेकर कितने खुश हैं। उन्होंने बचपन से हमें एक आलीशान जीवन दिया है। हम कुछ भी सोचते थे, अगले दिन वो हमारे सामने आ जाता था। जब उन्होंने हमारी खुशियों के लिए इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं, तो क्या हम उनकी खुशी के लिए एक चीज नहीं कर सकते? इशी, उदय ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपके चेहरे के भाव हमें बता रहे हैं कि आप कुंवर साहब से शादी नहीं करना चाहती।
हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको जबरदस्ती माँ बाप के किसी भी फैसले को अपने ऊपर थोपने नहीं देना है।
नहीं भाई, इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा मत बोलिए, माँ बाप जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे।
उदय ने एक गहरी सांस ली और ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम कैसे समझाएं ऋषि आपको।
इप्सिता अब उदय से इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो पहले ही काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर गई और उसने कंबल से अपना मुंह ढक लिया। उदय ने जब इप्सिता को इस तरह बिस्तर पर लेटे देखा, वो चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल गया। इप्सिता के मन में काफी बातें चल रही थी, लेकिन उसने अपने भाई से इस समय कोई भी बात शेयर करना ठीक नहीं समझा।
ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था हमने, अगर माँ बाप इतनी जल्दी हमारी शादी कर देंगे तो हमारे अपने सपनों का क्या होगा। राजघराने में तो और जाने कितने प्रतिबंध होते होंगे, हमारे घर से भी ज्यादा। वहां की बहू बन गई, एक बार तो शायद घर से बाहर निकलने को भी ना मिले।
इप्सिता अपने भविष्य के बारे में सोचते सोचते सो गई। अगले दिन सुबह इप्सिता का फोन बजा और फोन की रिंगटोन सुनकर ही उसकी नींद खुली। इप्सिता ने कॉल रिसीव करते हुए कहा,
हेलो नंदिनी, इतनी सुबह सुबह हमें फोन क्यों किया।
सुबह सुबह तुम्हें सुबह की हुई है, नंदिनी ने कहा, और मैं तो कल रात से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपने माँ बाप के घर पहुंचते ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई, हाउ सेल्फिश यू आर।
इप्सिता आंख मलते हुए उठकर बैठी और उसने बिस्तर का सहारा लेते हुए कहा,
कैसी बात कर रही हो, हम भला तुम्हें कैसे भूल सकते हैं।
नंदिनी ने इप्सिता की आवाज सुनकर कहा,
क्या बात है, तुम बहुत अजीब लग रही हो, सब ठीक तो है ना।
क्या बताएं तुम्हें नंदिनी,
इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ पहुंचते ही माँ बाप ने तो हमारे लिए एक अलग ही सरप्राइज गिफ्ट रेडी करके रखा था, हमें किसी भयानक झटके की तरह लगा है।
क्या मतलब है, तुम्हारी कोई समस्या हुई है क्या, नंदिनी शॉक्ड होते हुए बोली।
अब पता नहीं इसे समस्या कहेंगे या नहीं, इप्सिता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन माँ बाप ने कल रात डिनर के समय हमें बताया कि उन्होंने हमारी शादी राजस्थान के सबसे बड़े राजघराने में तय कर दी है।
जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, वो शॉक्ड होते हुए बोली,
क्या शादी, लेकिन यार तेरे माँ बाप इतनी जल्दी ऐसी कैसे शादी तय कर सकते हैं, तूने क्या बोला उन्हें, तू साफ साफ शादी के लिए मना कर देती ना।
क्रमशः